सब त्रिकालवर्ती साहूरम नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकारनाद ने ओंकार संघर्योजेने अहो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो ओ जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो
सैतालीस शक्तियों की चर्चा हम इस दोपहर के सत्र में प्रारंभ में कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री की अनेक रचनाएं सैतालीस शक्तियों के ऊपर बहुत पहले से प्रकाशित हो रही हैं। एक ये देखिए बहुत पुराना एडिशन है, ये गुजराती का एक पुराना एडिशन है आत्मवैभव का, और ये सब छपा है 1968 में। इसके पहले का एडिशन भी हो सकता है शायद, लेकिन ये 1968 का एडिशन है। इसमें आत्म प्रसिद्धि के नाम से ये आत्मा के अंदर ऐसी 47 शक्तियां ऐसी भरी पड़ी हैं, उसको इस चित्र में दिखाया गया है। इसी प्रकार से इसके हिंदी में भी एडिशन बहुत प्रकाशित हुए हैं, और जो ब्रह्मचारी हरि भाई थे ना, वो जो है उनको चित्रों में बहुत विशेष रुचि थी, इसलिए वो जो है 47 शक्तियों के चित्र बनाएंगे, आत्मा का चित्र बनाएंगे, उसमें 47 शक्तियों को दिखाएंगे, कोई एक वृक्ष बनाएंगे 47 शक्तियों का, उसकी एक एक पत्ती पत्ती पर एक एक शक्ति को बिठाएंगे, ऐसे वो चैतन्य वृक्ष ऐसे बहुत सारी रचनाएं वो करते रहते थे। अभी ये 47 शक्तियों पर अभी हम पिछली बार दिल्ली में गए थे पर्युषण पर्व में, तो वहां पर अपने आत्मार्थी ट्रस्ट में संध्या बेन आई हुई थी, संध्या बेन वो इस 47 शक्तियों पे और बहुत काम कर रही है। जैसे हमने कल एक पीएचडी करने की बात कही थी 47 शक्तियों पर, तो एक सज्जन सुबह मुझे मिले थे, सैल्यूट सर, ये कह रहे हैं कि अभी इनकी उम्र 70 साल की है, मेरे को पीएचडी करना है 47 शक्तियों पर। नहीं नहीं पीएचडी भी कराऊंगा। अच्छा ठीक है,
डिग्री नॉट इम्पोर्टेंट।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने अपना भाव बताया कि मेरे को डिग्री भी नहीं लेना है, लेकिन 47 शक्तियों पे काम करना है। वैसे ये बहुत काम के आदमी हैं, मैंने इनके पास में काम बहुत है, लेकिन उसके बाद भी इनका 47 शक्तियों पर काम करने का मन हुआ है। फोकस करने का भाव होता है, और ये वास्तव में बहुत अनुकरणीय है और आदरणीय है ये जो काम है। जैसे कल आपको बताया था ना, वो कौन ने कहा था, अभय जी कह रहे थे कि जब हम इसमें डूबते हैं ना, कोई भी विषय में जब हम डूबते हैं तो उसमें से ध्यान फलित होता है। लौकिक विषयों में डूबते हैं तो उसमें आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान फलित होता है, जब हम अपने आध्यात्मिक विषयों में डूबते हैं तो धर्म ध्यान से प्रारंभ होता है, और वो धर्म ध्यान बढ़ता 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 वो शुक्ल ध्यान पर ले जा करके छोड़ता है, और शुक्ल ध्यान पहले केवल ज्ञान दिलाता है। उसके बाद में दो शुक्ल ध्यान और केवल ज्ञान होने के बाद में, कल उत्तम चंद जी बता रहे थे ये इसकी प्रोसेस होती है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में तो एक एक शक्ति ऐसी है कि जिसमें आठ आठ व्याख्यान एक एक शक्ति पे होना चाहिए। लेकिन हमारे रमणीक भाई बोलते हैं कि तुमको एक दिन में आठ शक्तियां करनी है, क्योंकि छह दिन है और 47 शक्तियां हैं, उन्होंने 48 कर दी, तो आठ आठ शक्तियां एक एक दिन में होंगी तब तो निपटेंगी ना। लेकिन मेरे को शक्तियां निपटाना नहीं है रमणीक भाई,
आपकी
मर्जी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है,
दूसरा कोना
दूसरा। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अपन कोशिश करेंगे उनको पूरा करने की, निपटाएंगे नहीं पूरा करेंगे। लेकिन ये शक्तियों में वास्तव में बहुत माल है। आत्मा की 47 शक्तियों का प्रारंभ जीवत्व शक्ति से होता है। ये आपके सामने स्लाइड है जीवत्व शक्ति का। ये जो जीवत्व शक्ति है, इस पर मैंने बहुत सोचा कि आत्मा की 47 शक्तियों में सबसे पहली जीवत्व शक्ति क्यों है। इसलिए है ये जीवत्व शक्ति, इसके बिना तो आत्मा पैदा नहीं होता है, जन्म नहीं होता है आत्मा का इसके बिना। और इसका मेरे पास में आधार है, आप घबराना नहीं। क्यों नहीं पैदा होता है, इसमें इस शक्ति में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? आत्मद्रव्य हेतु भूत। क्या मतलब होता है इसका? कि जो आत्मद्रव्य को हेतुभूत कारणभूत है, आत्मद्रव्य का कारणभूत है। आत्मद्रव्य के कारण ये शक्ति नहीं है, इस शक्ति के कारण आत्मा है। इसने आत्मा को जीवन प्रदान किया है। ये शक्ति माँ बाप के समान है, ये आत्मा के माँ बाप के समान है ये शक्ति। कि आत्मा देखना, ये तो अलंकारिक भाषा में मैं कह रहा हूं कि ये माँ बाप के समान है और ऐसा है ऐसा ही, थोड़ी अलंकारिक भाषा है। लेकिन ये जीवत्व शक्ति पहले आ गई थी, बाद में आत्मा को लाएंगे तभी ऐसा होगा ना, कारण बन रही है। कहने की बात है ये, ना आत्मा कभी पैदा हुआ, ना आत्मा कभी पैदा हुआ, आत्मा तो अनादि से है। आत्मा की बात कर रहे हैं हम, किसी एक इंद्री दो इंद्री जीव की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई मनुष्य तिरंचे पशु नारकी की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो पैदा होने वाले सब जीव हैं, मनुष्य पैदा होता है, देव पैदा होते हैं, एक इंद्री दो इंद्री जीव पैदा होते हैं, ये सब पर्याय वाले जीव हैं। लेकिन जो आत्मद्रव्य है वो कभी पैदा नहीं होता। लेकिन जब से ये आत्मा है तब से ये जीवत्व शक्ति है। यदि इसको ये जीवनदायिनी शक्ति है, जीवनदायिनी जीवन को देने वाली शक्ति है, आत्मा को जो जीवन मिला है, आत्मा को जो अनादि अनंत जीवन मिला है, वो अनादि अनंत जीवन तो मिला है अस्तित्व गुण के कारण। फिर ये जीवत्व शक्ति क्या कर रही थी? ये जीवत्व शक्ति ये कर रही थी कि अस्तित्व गुण के कारण जो उसको जीवन मिला है, वो जीवन तो सामान्य जीवन था, उसमें ये निर्धारित नहीं था। सामान्य गुण है ना अस्तित्व गुण, उसमें ये निर्धारित नहीं था कि ये जीवन जीव के रूप में इसका जीवन होगा कि पुद्गल के रूप में होगा, कि धर्म के रूप में होगा, कि अधर्म के रूप में होगा, कि काल के रूप में होगा, कि आकाश के रूप में होगा। जीवत्व शक्ति ने उस अस्तित्व गुण के साथ में काम किया और वो आत्मा को जीवन जो मिला वो जीवत्व के रूप में जीवन मिला। क्यों? आत्मद्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। ये जीवत्व शक्ति कह रही है कि मैं आत्मद्रव्य की कारणभूत हूं और मेरा लक्षण चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा। बस चैतन्य 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 ऐसे भाव को धारण करके रखना, ये मेरा कार्य है, ये जीवत्व शक्ति का कार्य है। चैतन्य 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 चैतन्य। देखो चैतन्य ये जीवन है चैतन्य, यद्यपि ये चैतन्य से रिलेटेड दूसरी शक्ति है। दूसरी शक्ति माने दूसरे नंबर की शक्ति है, दूसरी माने दूसरे नंबर की शक्ति है। बहुत ये 47 शक्तियों का भाई साहब क्रमिक है विकास। आप कोई शक्ति को कहीं से निकाल करके कहीं ठूस नहीं सकते। इसका एक बहुत बढ़िया एक बहुत वैज्ञानिक रीजन है, 47 शक्तियों का उठाव है, एक क्रमिक विकास है। जैसे हम कोई 45 कोई 70 साल का व्यक्ति है उसकी आप 25 साल की उम्र को आप 45 साल के बाद में रख सकते हो क्या? 45 साल के 25 साल की उम्र को 45 साल के बाद में रखोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो 25 साल की उम्र में उसकी शादी होनी थी और आपने 25 साल को वहां से हटा दिया, अब 45 साल में रख दिया, अब उसकी शादी कब होगी? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए ऐसे ही शक्तियों को भी आप उसका क्रमिक विकास के रूप में देखिए। एक शक्ति दूसरी शक्ति को कारण बनती है। ये जीवत्व शक्ति चिति शक्ति को कारण बनती है, चिति शक्ति दृशी शक्ति को कारण बनती है, दृशी शक्ति ज्ञान शक्ति को कारण बनती है, ज्ञान शक्ति सुख शक्ति को कारण बनती है, सुख शक्ति वीर शक्ति को कारण बनती है, वीर शक्ति प्रभुत्व को, प्रभुत्व शक्ति विभुत्व को, विभुत्व शक्ति सर्वदर्शित्व को, सर्वदर्शित्व को सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व को, सर्वज्ञत्व स्वच्छत्व को, स्वच्छत्व। आज अपन 12 शक्ति की चर्चा करेंगे। बहुत इसका क्रमिक विकास है और एक दूसरे से उसकी कंटिन्यूटी है। तत्वार सूत्र है ना, तत्वार सूत्र जो ग्रंथ है, तत्वार सूत्र के भी 357 सूत्र हैं, उनमें भी भाई साहब क्रमिक विकास है। मैंने एक शक्ति यदि आपको एक पहले का सूत्र मालूम है तो अगला सूत्र क्या होगा, ये जो उसका जानकार है तत्वार सूत्र का वो बता देगा अगला सूत्र ये बनेगा। क्यों बनेगा? ये ही बन सकता है, इससे अलावा दूसरा बन नहीं सकता। हमारे डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर साहब हुकुमचंद जी साहब, वो जब तत्वार सूत्र की बहुत बहुत पहले बहुत स्टडी हुई है, जब वो शास्त्री वगैरह किया ना उन्होंने स्टार्टिंग में, बाद में तो ये अध्यात्म का कुमार चढ़ गया तो वो तत्वार सूत्र छूट गया था। अब वो जो है फिर से तत्वार सूत्र पर अनुशीलन लिख रहे हैं। लेकिन वो ऐसा बताते थे जब हम लोग वहां पढ़ते थे कि उनको तत्वार सूत्र दोनों तरफ से याद था। दोनों तरफ से माने एक से लेकर के 357 और उल्टा चलो 357 से लेकर के पहले सूत्र तक, ऐसे रिटर्न टू बैक, ऐसा भी याद था और वैसा भी याद था। और उसका क्रमिक विकास है ना भाई, आप मेरे से गिनती पूछो मैं भी बता सकता हूं, 1 से 100 तक की बता सकता हूं, 100 से 1 की बता सकता हूं। 100, 99, 99, 97। तो ये जो जीवत्व शक्ति है इससे प्रारंभ क्यों हुआ भाई, इसका कारण कौन है बताओ? भाई जीवत्व शक्ति तो चिति शक्ति का कारण है, चिति शक्ति दृष्टि शक्ति का कारण है, लेकिन प्रश्न ये है कि जीवत्व शक्ति का कारण कौन? दो कारण है, दो इसके उत्तर हो सकते हैं। एक उत्तर तो ये है कि जीवत्व शक्ति के बिना पैदा ही नहीं हुआ तो हम कहां से कारण ढूंढेंगे, पैदा तो हो जाने दो, एक कारण, एक उत्तर। दूसरा उत्तर बताओ क्या है? दूसरा उत्तर ये है कि ये जीवत्व शक्ति का कारण चिति शक्ति है। क्यों? क्योंकि चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा, ये जो जीवत्व शक्ति है ये चैतन्य मात्र भाव को धारण करने वाली शक्ति है। देखो एक और रीजन अब भी ख्याल आ रहा है मुझे, क्या रीजन है कि ये शक्ति ये द्रव्य को पैदा करती है? बोलो क्या रीजन है उसका? एक कारण और ये है कि शक्ति जो है हेमचंद जी साहब स्त्रीलिंगी है, शक्ति जो है ना वो स्त्रीलिंगी है और द्रव्य जो है वो पुल्लिंगी है,
इसलिए बेटा हो जाए बेटी, पैदा करने वाली तो स्त्री ही होगी। ये द्रव्य को पैदा कहे, आत्म द्रव्य हेतु भूत, आत्म द्रव्य की जो कारण है, आत्म द्रव्य की कारण कौन होगी? आत्म द्रव्य तो सबका कारण है, अनंत गुणों का कारण है, अनंत पर्यायों का कारण है। ऐसा नहीं है भाई साहब, ये तो हमने ऐसी पढ़ाई पढ़ रखी है, कैसी, कि द्रव्य जो है वो सबका कारण है, द्रव्य सबका कारण है। लेकिन जब द्रव्य गुण पर्याय की हम चर्चा करें तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंट आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे आपको आगम में मिलेगी। प्रवचन सार की एक गाथा है, वो गाथा ये कहती है कि गुण पर्यायों की रचना द्रव्य करता है, और वही गाथा है या उसके बाद की गाथा है, वो गाथा कहती है कि द्रव्य की रचना गुण पर्याय करते हैं। ये तत्व प्रज्ञापन की लगभग लगभग गाथा होगी, ये 107-8 के आसपास होगी। क्या बोला? द्रव्य गुण पर्यायों की रचना करता है एक विधान, दूसरा विधान द्रव्य की रचना गुण पर्याय करते हैं। बोलो, हम हर जितनी सामान्य शक्तियां हम पढ़ते हैं, मैंने इसमें यह प्रयोग किया है, ये 47 शक्तियों के अर्थ बताने में यह प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है? कि हर शक्ति के व्याख्यान में ये मैंने एक पेटेंट लाइन डाली है। कौन सी पेटेंट लाइन? जिस शक्ति के कारण आत्मा, ये हर शक्ति में आपको ये पेटेंट लाइन मिलेगी, जिस शक्ति के कारण आत्मा, जिस शक्ति के कारण आत्मा, माने वो आत्मा काम करता है लेकिन उसमें कारण कौन है? बोले आत्मा की वो शक्ति इसमें कारण है, उस शक्ति के कारण आत्मा ये कारण कार्य करता है। जिस शक्ति के कारण आत्मा, जिस शक्ति के कारण आत्मा, जिस शक्ति के कारण आत्मा, माने वो गुण पर्याय आत्मा का काम करते हैं। आत्मा गुण पर्यायों का काम करता है। भाई एक परिवार है, एक परिवार है, उस परिवार में माता पिता भी हैं, बालक भी हैं, बच्चे भी हैं, और सब पूरा परिवार है। ऐसा है क्या माता पिता को ही इस बच्चों का काम करना है? नियम है, नियम कि साहब माता पिता तुम हमारे माता पिता हो, तुमको हमारा सब काम करना है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे माता पिता ये गलती करते हैं, बेटा तू कुछ मत कर, बेटा तू कुछ मत कर, तेरा सब काम हम करके देते हैं। आप अपने बालक को अपंग बना रहे हो, उसको कुछ करने नहीं दे रहे हो। ला बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है, तू क्यों परेशान हो रहा है? अरे उसको उसका काम तो करने दो, थोड़े बहुत काम अपने भी उससे कराओ, उससे उसको दूसरों का काम करने की शिक्षा मिलती है, परोपकार की शिक्षा। आप अपने घर से दो उसको, आप उससे काम नहीं करा रहे हो, आप उसको काम करना सिखा रहे हो। ऐसी ये शक्तियां जो हैं, आत्मा सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्व सामर्थ्यशाली है, लेकिन वो अपनी शक्तियों को ऐसे ही रहने देगा, अपने गुणों को ऐसे ही रहने देगा, वो अपनी पर्यायों को ऐसे ही रहने देगा? वो जो सामर्थ्यशाली बना उसमें है। गुरुदेव तो ऐसा कहते हैं, जो एक शक्ति एक गुण का दूसरे गुण में रूप जाता है ना, वो इसका अर्थ ये है। क्या अर्थ है? कि वो सबको मिलजुल के काम करना है, और कोई काम, एक काम भी अकेले एक गुण से नहीं होता। क्या बोला? ज्ञान है, ज्ञान, देखना ज्ञान का परिणमन हुआ, ज्ञान का परिणमन हुआ, इसमें कितने गुणों ने काम किया आप बता सकते हो? ज्ञान का परिणमन हुआ, ज्ञान की एक पर्याय हुई, कितने गुणों ने इसमें काम किया? दो चार गुण तो बता ही सकते हैं हम भाई, ज्ञान के बिना तो होगा ही नहीं ज्ञान का परिणमन, ज्ञान गुण ने कार्य किया।
देखो ये बोल रहे वीर्य वीर गुण ने कार्य किया, वीर अंतराय शक्ति होती ना, वीर अंतराय कर्म का चोपसम चाहिए, वीर गुण ने काम किया और परिणमन किया। ये कौन करता है परिणमन करने का काम, बोलो कौन सा गुण है, द्रव्यत्व गुण। तो ये द्रव्यत्व गुण यदि वहां ना करे परिणमन, तो ये ज्ञान गुण कार्य कर सकता है अपना, तो वो ज्ञान गुण भी अपना कार्य करता है तो द्रव्यत्व भाई को बुला लेता है कि तू भी रहे साथ में, वीर को भी बुला लेता है और अपने एक भाई को तो पहले भेज देता है ज्ञान, अभी बोल देता हूँ वो बाद में बोल देता हूँ, अपने एक भाई को पहले भेज देता है। कैसे भेज देता है कि ज्ञान मैं आने वाला हूँ, दर्शन तू जा पहले देख के आ, तू पहले जाके देख ले अच्छे से समझ ले, उसके बाद में मैं आऊंगा, निराकार उपयोग मई, बाद में साकार उपयोग काम करता है, पहले निराकार उपयोग जाता है, पहले दर्शन बाद में ज्ञान। अस्तित्व के बिना वो ज्ञान, देखो ज्ञान गुण के द्वारा ज्ञान पर्याय होती, ज्ञान पर्याय रूप परिणमन होता है। चलो अपन ने एक वाक्य बोला, मैं बताऊं आपको इसमें, या ज्ञान पर्याय जानती है ऐसा हम कहेंगे, तो ज्ञान पर्याय, ये जो ज्ञान पर्याय का कार्य हुआ, जानने का कार्य हुआ, ये ज्ञान पर्याय से हुआ, इसके लिए उसको वीर ने सहयोग किया, इसके लिए उसने परिणमन होता है, तो परिणमन द्रव्यत्व ने किया है। परिणमन होता है, ये है कहां से आया, ये अस्तित्व से आया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसकी रमत करो, रमत रमत माने आप ये शक्तियों के साथ में खेलो, खिलवाड़ मत करो लेकिन खेलो इनके साथ में। ये जो है ये हमारी शक्तियां हैं, सबका वर्किंग इसमें सामने आना चाहिए। आप यदि किसी गुण का उपयोग नहीं करते हो तो आप उसको क्या बोलते हैं, अपन लोक में भी कहते हैं कि आप उसको उसमें डाल रहे हो, क्या बोलते हैं, डल बना रहे हो उसको, आप डल बना रहे हो, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, उससे डल बन रहा है, डल हो जाता है, हैं? उपेक्षित हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और आप उसका उपयोग करते हो, बच्चों से हम काम करने को कहते हैं ऐसा उत्साह से, दौड़ दौड़ करके, आप बोलो तो सही काम, तो दौड़ दौड़ के करता है, आप कुछ काम नहीं करते हो तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, अब क्या करेगा, पड़ा पड़ा टीवी देखेगा और क्या करेगा। ये संस्कार शिक्षा नहीं है, संस्कार की शिक्षा, आत्मा को भी ऐसे संस्कार देने की आवश्यकता है। एक एक गुण को आप संस्कार दीजिए, एक एक गुण को आप जीवत्व शक्ति से जियो, जीवत्व शक्ति से आप जियो, कैसे जियो, कैसे जियो, जिंदा दिली से जियो, ऐसे मर मर के मत जियो, माने ये जीवत्व शक्ति हमको जिंदा दिल बनाती है। अरे तुम जिंदा हो क्या मुर्दा हो, जीवत्व शक्ति कहती है मैं जब तक हूं तब तक ये आत्मा मर नहीं सकता, मैं हूं ना। ऐसे ये जीवत्व शक्ति, एक एक शक्ति के काम हम देखें, जीवत्व शक्ति कह रही है जिस शक्ति के कारण आत्मा जड़ रहित चेतन स्वरूप होता है, ये नहीं, ये दूसरा पढ़ लिया, आत्मद्रव्य के कारणभूत चैतन्य मात्र भाव प्राण को धारण करता है, इसमें कर्ता शब्द छूट गया है, उसे जीवत्व शक्ति कहते हैं। चैतन्य मैंने इसमें एक प्राण शब्द अपनी तरफ से डाला है अर्थ में, मूल में प्राण शब्द नहीं है, मूल में तो है ना, ये आत्मद्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षण, ये जो धारण शब्द है ना पंडित साहब, धारण, इस धारण से प्राण निकाला है, क्यों,
जीव जीव पैदा होता है ना, जैसे अपने एक इंद्रिय आदि दूसरे संसारी जीव हैं, जीव पैदा होते हैं, ये पैदा होते हैं तो इसमें दो काम होते हैं, आपने उनसे पढ़ा होगा उज्ज्वलाबेन से, दो काम होते हैं, वो छह क्या होती हैं, पर्याप्तियां होती हैं, छह पर्याप्तियां होती हैं, वो पूरी होती हैं, और उसके बाद में प्राण, प्राण ये जो है ना पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है, ऐसा माना है, पर्याप्ति कारण और प्राण को कार्य माना है, तो उसमें प्राण आते हैं, एक इंद्री की पर्याप्ति पूर्ण होती है तो उसमें एक इंद्री प्राण आता है, दो इंद्री की पर्याप्ति पूर्ण होती है, जो भी है जैसा उसका पूरा कर्णानियोग का हिसाब, मुझे नहीं भाषा हो सकती थोड़ी सी बदल जाए, तो उसमें प्राण आता है, वो उस कार्य के सक्षम हो जाता है। ऐसे यहां पर ये जो जीवत्व शक्ति है, ये जीवों जीव के जितने भाव है उन सब भावों में प्राण डालने वाली ये जीवत्व शक्ति है, आत्मा के अनंत गुण हैं। ये अनंत गुण में प्राण डालने का यदि कोई काम करता है तो ये जीवत्व शक्ति करती है। बोले साहब ऐसे अनंत गुणों में कैसे प्राण डाले जाएंगे? आत्मा में प्राण डालने वाली कही जीवत्व शक्ति, आत्मद्रव्य हेतु भूत, आत्मा में प्राण डालने वाली जीवत्व शक्ति है, और आत्मा अनंत गुणात्मक है तो उसके एक एक गुण में भी प्राण डालने वाली कौन? ये जीवत्व शक्ति ही है जो उसमें ये प्राण डालती है, चैतन्य रूप भाव प्राण। संसारी जीव 10 प्राणों से जीते हैं, सिद्ध भगवान किससे जीते हैं? उनके पास तो कोई प्राण नहीं है। ये जो चैतन्य मात्र भाव प्राण है ये वहां जिंदा रहता है, और वो जो सिद्ध भगवान है ये उससे ही जीते हैं। ये जो चैतन्य मात्र भाव प्राण है ये इसका पारिणामिक भाव है। चैतन्य मात्र जीवत्व शक्ति कौन से भाव वाली है? पारिणामिक भाव वाली है। इसलिए ये जो पारिणामिक भाव है, और इस पारिणामिक भाव से प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक गुरुदेव तो ऐसा कहते हैं, द्रव्य उसके अनंत गुण, एक एक शक्ति उसके अनंत गुणों में जाती है, उसके अनंत गुणों में नहीं, उसकी एक एक पर्याय में जाती है, उसकी एक एक पर्याय के जो अनंत अनंत अविभाग प्रतिच्छेद हैं, उन एक एक अविभाग प्रतिच्छेद में जाती है, कुछ नहीं छोड़ती, सबके अंदर, इसके अंदर में इतनी पावर है, शक्ति है ना, शक्ति, शक्ति तो पावर का ही नाम है, इसके अंदर में इतनी पावर है कि आत्मा का एक एक प्रदेश, बोलो, आत्मा का एक एक प्रदेश घोषणा कर रहा है। किस बात की घोषणा कर रहा है? मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं, किसके कारण? इस जीवत्व शक्ति के कारण। आत्मा के अनंत गुण इस जीवत्व शक्ति के कारण जीते हैं, आत्मा की अनंत अनंत पर्याय इस जीवत्व शक्ति के कारण जीती हैं, आत्मा के असंख्य अविभागी, असंख्य प्रदेश इस जीवत्व शक्ति के कारण, आत्मा का द्रव्य इससे जीता है, आत्मा का क्षेत्र इससे जीता है, आत्मा का काल इससे जीता है, आत्मा का भाव इससे जीता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में व्यापक, द्रव्य गुण पर्याय में व्यापक, प्रदेश प्रदेश में व्यापक, अविभाग प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद में व्यापक, ऐसी ये जीवत्व शक्ति है। देखो एक बात और बताऊं मैं आपको, एक दीपचंद जी शाह कासलीवाल हैं जिन्हें अनुभव प्रकाश लिखा, उनका एक ग्रंथ है बहुत बढ़िया, ये जो 47 शक्तियों की का जो मसाला है ना भाई साहब, जो आगम गुरुदेव को मिला विशेष रूप से, ये तो अमृतचंद्राचार्य ने आत्मख्याति टीका में दिए जो 47 शक्तियां, लेकिन इसका जो विशेष विवरण है वो दीपचंद जी शाह कासलीवाल में मिलता है। उनके चिरविलास में शक्तियों के बहुत रूप प्रयोग आपको मिलेंगे।
थैंक यू देना चाहिए। किस लिए देना चाहिए? अरे तुम भी उसका काम करोगे तो वो भी तुमको थैंक यू दे, इसलिए सिखाने के लिए संस्कारशाला चल रही है। नहीं तो वो कैसे सीखेगा कि कोई दूसरा मेरा थोड़ा सा काम कर देवे तो मुझे उसको थैंक यू बोलना चाहिए, ये कैसे सीखेगा? आपने उसका आप उसने आपका काम किया तो आपने उसको थैंक यू बोला तो इससे सीखेगा वो। उसका सबसे बड़ा गुरु अपने बेटे का सबसे बड़ा गुरु उसका उसके माता पिता उसके सबसे बड़े गुरु है। ये जीवत्व शक्ति का सूत्र बना बताया, सबको जीवत्व देता, देखो लो बट रहा है, बट रहा बट रहा बट रहा रे, जीवत्व का खजाना बट रहा रे। एक एक गुण तुम सब ले जाओ जीवत्व, एक एक पर्याय तुम सब ले जाओ जीवत्व, एक एक प्रदेश तुम सब ले जाओ जीवत्व, ले जाओ बट रहा है। ये जो इसमें मर्म है, ये मर्म इसकी एक एक शक्ति का गुरुदेव ने इसको बहुत 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 खोलने का उन्होंने अपनी तरफ से, मेरा बज रहा है क्या? बहुत बहुत कुछ उन्होंने इसको बताने की कोशिश करी है। जैसे ये इनने रूप है ना, वो दो चार शक्तियों में तो गुरुदेव ने घटाया है, लेकिन ऐसे ही आप सब शक्तियों में घटा लेना। परमात्म पुराण जो है उसमें ये प्रयोग है। एक और उनकी रचना है, मैं एक मिनट में उसके बारे में बताना आपको जरूर चाह रहा हूं। उन्होंने एक रचना लिखी है अध्यात्म पद संग्रह, उसमें कोई 500-700 पद है पंडित जी साहब। वो अध्यात्म पद संग्रह में एक 87 या 86 नंबर का एक पद है, 8 लाइन का पद है, पद उसको पुराने पद सवैया वगैरह पद हैं, सवैया ही सवैया, तो उसके 8 पंक्तियां होती हैं उसमें। वो पद उन्होंने लिखा, अब वो कैसे लिख गया भगवान जाने, लेकिन उसके बाद में दीपचंद जी को खुद विकल्प आया, मैंने ये पद तो बना दिया है लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं समझ पाएगा। तो वो जो सवैया नाम का पद है, उन्होंने उस पद की एक टीका लिखी, व्याख्या लिखी, और उसका नाम उन्होंने खुद दिया सवैया टीका। ये उनकी एक रचना का नाम है। जैसे डोडामल जी की एक चिट्ठी है ना, उसका नाम रहस्य गुण चिट्ठी है, ऐसे ही दीपचंद जी की एक पद है, उस पद का उन्होंने 6-8 पेज में उसका विस्तार से व्याख्यान लिखा, मेरे पास में है। और वो जो है उस पर उन्होंने उसकी टीका लिखी, और क्या जोरदार उसमें माल उन्होंने भरा है एक पद में, और उसकी व्याख्या ऐसी जोरदार करी है कि अभी तक हमको ऐसा लगता है, रमणीक भाई हमको ऐसा लगता है कि जो वस्तु है, आत्मा है या प्रत्येक द्रव्य है, वो द्रव्य गुण पर्याय इन तीन में पूरे हो जाती है। लेकिन उन्होंने ऐसी व्याख्या करी है कि नहीं, आत्मा में या द्रव्य में अकेले गुण ही नहीं होते हैं, गुण होती हैं, शक्तियां होती हैं, स्वभाव होते हैं, धर्म होते हैं, ये सबको अलग अलग क्यों नहीं आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? गुण अलग चीज है, भले ही एक ज्ञान गुण है, एक ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान का एक गुण स्वरूप अलग है, ज्ञान का धर्म स्वरूप अलग है, ज्ञान का स्वभाव स्वरूप अलग है, ज्ञान का शक्ति स्वरूप अलग है, आप उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो। उन्होंने उसमें कितना बढ़िया, शायद मैं उस पद को याद करूंगा, भले 8 दिन लग जाए मेरे को 8 लाइन को याद करने में, लेकिन मैं उसको आपको सुनाऊं। इतना जोरदार पद है, और उसमें एक एक गुण के ऐसे उन्होंने गुण के परिचय अनंत करे, एक एक गुण ताके परिचय अनंत करे, और एक एक पर्याय की देखो उसमें ऐसा उसमें रूप कम से कम 8-10 रूपक बनाए उन्होंने। एक गुण का एक पर्याय हुई एक समय की, एक पर्याय के अनंत नृत्य हुए, एक पर्याय जो है वो अनंत नृत्य करती है। हाँ याद आ गई, पट नहीं आता है, घट आता है, घट सवैया टीका याद आ गई ना।
हमने मंगलायतन पत्रिका में छापी भी थी उसको, उसका पूरा पूरा पूरी छापी थी। जब वो गुण विशेषांक निकाला था ना, उसमें वो एक छापा था सवैया टीका। वो एक एक पर्याय अनंत नृत्य करती है, एक एक नृत्य के अनंत घट होते हैं। घट माने घाट, घाट माने किनारे, घाट माने क्या, ये होते ना घाट, नदियों के घाट होते हैं, वो किनारे हैं। वो एक एक नृत्य के अनंत अनंत घाट हैं, एक एक घाट के अनंत स्वरूप हैं, एक एक क्या क्या है उसमें, आप जो है ना उसमें पढ़ लेना। बहुत बहुत ऐसे जो है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इसलिए इसके साथ में रमत करने की बात कह रहा हूं मैं। आप यदि इसको वैसे इसका अध्ययन करने जाएंगे तो आप बोझिल हो जाएंगे, आपका माथा फट जाएगा। लेकिन यदि आप इसके साथ में खेलोगे मस्ती के साथ में, तो आपको वो सारा विषय आपको खेल खेल में समझ में भी आएगा और आपको उससे आनंद की अनुभूतियां होंगी। ऐसे ऐसा उसमें खेल है। क्या बोला, आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। शक्तियों के चार स्वरूप बताए इसमें, कितनी शक्तियां हैं, 47। 47 शक्तियों को चार स्वरूप में डिवाइड किया आचार्य ने। चार स्वरूप कौन से हैं, चार स्वरूप हैं। इन्होंने क्या किया है, कुछ शक्तियों में जब उनका विवरण किया आचार्य ने, तो कुछ शक्तियों के अंत में उन्होंने लक्षणा शब्द का प्रयोग किया। मैं उसमें इसको ऐसे विभाजित कर रहा हूं, ये लक्षणा शक्तियां हैं। कुछ में उन्होंने आत्मिका शब्द का प्रयोग किया है, ये उसकी आत्मिका शक्तियां हैं। कुछ में उन्होंने मई शब्द का प्रयोग किया है, ये मई शक्तियां हैं। और कुछ में उन्होंने रूपा शब्द का प्रयोग किया है। चार प्रयोग हैं उनके, लक्षणा शक्तियां 8 हैं, आत्मिका शक्तियां 9 हैं, मई शक्तियां 15 हैं। बोलो कितनी बची, 15 बची, रूपा शक्तियां भी 15 है। देखो तो पहली शक्ति जो है जीवत्व शक्ति है, ये कौन सी शक्ति है, ये लक्षणा शक्ति है, चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा। इसमें लक्षण की चर्चा है, थोड़ी लक्षणों के, लक्षण के माध्यम से चर्चा की है, इसलिए इसको अपन लक्षणा शक्ति कह रहे हैं। दूसरी शक्ति जो है वो अजड़त्वात्मिका, ये आत्मिका शक्ति है। और जो तीसरी शक्ति है वो है अनाकार उपयोग मई, ये मई शक्ति है। और इसके बाद में ये पांचवी भी लक्षणा है, छठी शक्ति है रूपा शक्ति। ये तो चार उदाहरण दे दिए मैंने 6 शक्तियों में आपके, बस इन्हीं के प्रयोग आगे 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 आए हैं। छठी शक्ति है स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा, ये रूपा शक्तियां हैं। 8 शक्तियां कौन सी, लक्षणा। 9 शक्तियां आत्मिका। मई शक्तियां कितनी, 15। और रूपा शक्तियां कितनी, 15। बोले साहब कहां से निकाली, इसी में से निकाली। कैसे निकाली, खेल खेल में निकाली। वो आज सुबह अभय जी सप्तभंगी तरंगणी की चर्चा कर रहे थे, सप्तभंगी तरंगणी की चर्चा कर रहे थे ना, उसका मंगलाचरण है भाई साहब, उसका मंगलाचरण, उसका मंगलाचरण में उसमें एक शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। बोले साहब ये सप्तभंगी तरंगणी ग्रंथ आपने कैसे बना दिया, तो उन्होंने लिखा हेलो लुप्त। कैसे बना दिया, बोले हेलो लुप्त, हेला माने क्या, हेला माने खेल खेल में। बोले कैसे बना दिया, बोले ये ग्रंथ हमने खेल खेल में बना दिया। अरे तुमने तो खेल खेल में बना दिया, हमारी तो हमको पसीना आ रहा। क्योंकि बहुत कठिन रचना हो गई वो जो है, और उसका अनुवाद भी बहुत अच्छा नहीं मिलता, इस कारण से उसको समझने में बहुत परेशानी हुई। जब
प्रथम शब्द
उसमें भी यही शब्द है, सही बोल रहे हैं आप, हेलो लुप्तमस्तोमम ऐसा कुछ है ना, हेला शब्द। माने इसको खेलना चाहिए, आनंद आनंद लो। खेल, हम खेल शब्द सुनते से ही हमको आनंद आने लगता है ना। खेल शब्द सुनते से ही, जैसे इमली शब्द सुनते से ही मुंह में पानी आता है, ऐसे ही खेल शब्द सुनते, हम आपको अभी प्रवचन नहीं सुनाने वाले, हम आपको खिलाएंगे। देखो कैसे सबके चेहरे खिलते हैं। हम प्रवचन नहीं सुना, प्रवचन सुनाने वाला माने हमने कहा प्रवचन सुनाना तो लोग गायब हो जाएंगे, और हम बोल रहे बच्चों को बोलो आप, अरे तुमको खेल खिलाएंगे, तुमको खेल खिलाएंगे। बच्चे देखो दौड़ दौड़ के आते हैं। ऐसे मैं आपको 47 शक्तियों डमरू बजाऊंगा और 47 शक्तियों का खेल खिलाऊंगा। देखो अजड़त्व आत्मिका दूसरी शक्ति है ना, कारण कारण अपन 12 शक्तियां कम से कम उनकी कारण की खोज करें। देखो पहली शक्ति जीवत्व शक्ति, जीवत्व शक्ति में से क्या निकली, चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा, वो चैतन्य निकला, वो चैतन्य से बनी चिति शक्ति। बोले साहब ये चिति शक्ति कैसी है, अजड़त्वात्मिका चिति शक्ति ही। ये चिति शक्ति आत्मा को जड़ नहीं होने देती, ये शक्ति देखना शक्ति, ये चिति शक्ति आत्मा को जड़ नहीं होने देती। हम ऐसा बोले ये चिति शक्ति के कारण आत्मा जड़ नहीं होता, ये रोते रोते क्यों बोल रहा, शक्ति है ना तो शक्ति से बात कर, होने नहीं देती जड़। आत्मा ने इतने गंदे गंदे काम किए, इतने गंदे गंदे काम किए, व्यवस्था ने उसको निगोद में पहुंचा दिया, लेकिन ये चिति शक्ति ने, ये चिति शक्ति के कारण वहां भी आत्मा का चैतन्य समाप्त नहीं हो पाया। भले ही वो इतना सा रह गया अक्षर के अनंत में भाग। बोले साहब वो तो ज्ञान है, ये चिति के ही दो रूप हैं, ज्ञान और दर्शन, घबराओ मत। ये चिति शक्ति ने वहां भी उसका चैतन्य जागृत रखा। देखना चैतन्य के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्या बोला, हमारे एक भाई साहब थे, एक अपने दिल्ली के अपने अध्यक्ष थे ना, वो इंद्रसेन जी, इंद्रसेन जी थे मोक्षु मंडल के अध्यक्ष, वो 15 साल तक कोमा में पड़े रहे। उनको क्या याद था भाई साहब, उनसे कुछ पूछो तो क्या जवाब मिलता था, जवाब तो कुछ नहीं मिलता था, तो फिर उनको काय को घर में रखा था, चिति शक्ति के कारण। क्योंकि उनका चैतन्य बोलता था, वो भले ही कोई चीज पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, बता नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए, ये सब ज्ञान के रूप हैं, लेकिन जो चेतना, जो ज्ञान का रूप है चेतना, वो चेतना वहां उनका जिंदा था, और उनकी चेतना 10 प्राणों से जीवित थी, 10 प्राणों से उनकी चेतना जीवित थी। खाने के, खाने का काम चल रहा था, पीने का काम भी चल रहा था, सेंसेशन भी बहुत कम हो गया था, लेकिन इसका मतलब खत्म नहीं हो गया था सेंसेशन। ये कोमा वालों को भी कभी, जैसे बेटा बहुत दूर परदेश में हो, माँ बाप किसी को कोमा में चले जाएं, तो वो बेटा आए परदेश से, तो उसको ऐसे कान में जोर जोर के, एक बेटा आया है, बेटा आया है, क्या पता कोमा से बाहर आ जाए। तो चेतना है ना उसमें, तो ये चिति शक्ति उसको जड़ नहीं होने देती। ये चिति शक्ति का ज्ञान एक रूप है, ज्ञान एक रूप है, एक रूप वो निगोद का, निगोद का एक रूप जो अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान, और दूसरा रूप केवल ज्ञान का। दोनों में किससे चेतना है, दोनों में किससे चेतना है, दोनों में चेतना चिति शक्ति के कारण है। निगोदिया को भी चेतना चिति शक्ति के कारण, और सिद्धों को भी चेतना ये चिति शक्ति के कारण। ये चिति शक्ति उसको जड़ नहीं होनी, ये तो वेरी वेरी स्पेशल है।
ज्ञान के साथ दर्शन को भी
अभी आगे आता है ना नंबर, अभी आता है, चिति के भेद करेंगे अभी अपन। चेतना जो है, चेतना क्या बता रहा था मैं, चेतना, चेतना को बहुत ढंग से आचार्यों ने बहुत ढंग से कहा इसकी। आप जो आपको वो भाई साहब बैठे हैं हमारे पीएचडी वाले, अब चेतना को आप विस्तारित करो, चेतना को, जीवत्व को विस्तारित 10 प्राणों से आप और प्रकार से विस्तारित कर सकते हैं। पीएचडी के लिए तो मसाला चाहिए ना। ये चिति को विस्तारित करो, चेतना को विस्तारित करो। चेतना दो प्रकार की, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। चेतना तीन प्रकार की, दूसरे ढंग से चेतना के तीन प्रकार, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, और फिर से आगे ज्ञान चेतना। पहले जो ज्ञान चेतना थी वो निगोदिया को भी थी, लेकिन जो दूसरी ज्ञान चेतना है वो सिर्फ सम्यक दृष्टियों को है, ज्ञानियों को है, अलग अलग रूप है ज्ञान चेतना के। तो ऐसा जो है ये चिति शक्ति जो है जड़ नहीं होने देती। उसके बाद क्या होता है देखो, अब चिति शक्ति साहब, ये चेतना के रूप कौन से हो सकते हैं, चेतना के कौन से रूप हो सकते हैं? वो ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना को इसमें नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? हाँ, लेकिन ज्ञान चेतना तो अविकारी है, वो भी नहीं ली। ज्ञान चेतना माने वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी वाली, वो भी कर्म सापेक्ष है। वो कर्म चेतना, कर्म फल चेतना के अभाव से प्रकट हो रही है, वो उसका वो मजा नहीं है। अनादि जो पारिणामिक भाव स्वरूप है, तो उसके दो ही स्वरूप हैं। पारिणामिक भाव स्वरूप जो ज्ञान, जो चेतना है, उसके दो स्वरूप हैं, एक दर्शन चेतना और दूसरी ज्ञान चेतना। दर्शन चेतना को दृशी शक्ति के रूप में कहा और ज्ञान चेतना को ज्ञान शक्ति के रूप में कहा। दृशी शक्ति और ये ज्ञान शक्ति आ गई अपनी तीसरी। दृशी शक्ति कैसी है? दृशी शक्ति, वाह, अनाकार उपयोगमय। कैसा उपयोग हो सकता है? देखो, एक चेतना भी, एक हम शब्द दे रहे हैं, चेतना भी शब्द दे रहे हैं, एक इसी के इक्वल, चेतना के ही इक्वल एक और शब्द आगम में दिया है, और वो है उपयोग। जैसे चेतना के ज्ञान दर्शन भेद हैं, ऐसे उपयोग के भी ज्ञान दर्शन दो भेद हैं। लेकिन चेतना में जैसे वो तीन प्रकार की चेतना कही ना, ऐसी उपयोग में नहीं कही ऐसी तीन प्रकार का उपयोग। उपयोग में तीन प्रकार का उपयोग कहा, वो दूसरे नाम से कहा। कौन से नाम से कहा? शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। ये उपयोग के तीन रूप ऐसे भी हैं। उपयोग के दो रूप जो हैं, ये उसके ओरिजिनल हैं, स्वयं से हैं। ये तो विकार है, शुभाशुभ विकार, ये तो विकार के भेद हैं। ऐसी कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये विकार के भेद हैं। ओरिजिनल ये आत्मा की शक्तियां हैं। जो ओरिजिनल आत्मा की शक्ति है, उसमें एक अनाकार उपयोगमयी, ये बहुत प्यारी शक्ति है। यदि आपको ज्ञान है ना, ज्ञान, और इस ज्ञान हमारे राग से जब मिश्रित हो जाता है ज्ञान, ये बहुत विकल्प पैदा करता है। क्या बोला? जब ये ज्ञान राग से मिश्रित होता है तो ये बहुत विकल्प पैदा करता है, बहुत छलांगे लगाता है, बहुत उछल कूद मचाता है। ये जान लू, ये जान लू, ये जान लू। ये जो साकार बना है ना, इसका साकार बना, इस साकार बने को इस सविकल्प कहा है। अच्छा बताओ, केवल ज्ञान सविकल्प होता है कि निर्विकल्प होता है? अब हमने निर्विकल्प शब्द का अर्थ तो रूढ़ हो गए हम, निर्विकल्प। लेकिन ये ज्ञान का स्वरूप ही सविकल्प होता है, साकार कहो अथवा सविकल्प कहो। और दर्शन जो है आत्मा का एक उपयोग ऐसा है, जिसको अपन चेतना भी कह सकते हैं। दर्शन एक ऐसा उपयोग है, वाह, अनाकार उपयोगमयी। निर्विकल्प, उसको निर्विकल्प कहा। इसलिए आपको यदि वो वाली निर्विकल्प अनुभूति नहीं हो रही हो, वो वाली
सम्यक दर्शन वाली,
तो कम से कम ये दर्शनोपयोग वाली निर्विकल्प अनुभूति तो हो ही रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रुकने का प्रयास किया करो। मैं दूसरी बार कह रहा हूं भाई साहब, रुकने का प्रयास। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि वो निराकार उपयोग नहीं, वो निर्विकल्प है। कुछ तो वो निर्विकल्पता, उसकी निर्विकल्पता और इसकी निर्विकल्पता भले ही एक जैसी ना हो, लेकिन दोनों के एक समान नाम क्यों रखे हैं? कुछ तो मिलता होगा। तो ऐसी वो निर्विकल्पता का अभ्यास ये दर्शनोपयोग के द्वारा होता है। कैसे होता है मालूम? अभी हमारे वहां पर मंगलायतन में आप थे भाई साहब, एक वो कौन से विषय पर अपन ने गोष्ठी रखी थी ना, तो उसमें मैंने एक ये विषय छेड़ा था वहां पर, मैंने इस विषय को उठाया था वहां पर। आप कैसे रुक सकते हो बताऊं मैं आपको, कैसे रुक सकते हो उसका थोड़ा सा एक प्रयोग बता रहा हूं। रमणीक भाई आपके लिए बहुत बढ़िया है, मेरा उपयोग एक विषय में लग रहा है, एक विषय में मेरा उपयोग लग रहा है और बहुत परेशान हो गया माथा। तो अब क्या हुआ कि अब यार यहां से उपयोग हटाओ, जैसे अपन लोग कोई चर्चा भी करते हैं ना, और कोई चर्चा के बाद में थोड़ा सा टेंशन पैदा हो जाए, तो एक तीसरा समझदार आदमी बैठा होता है, वो बोलता है यार ये टेंस ज्यादा हो रहा है, उपयोग बदल दो, विषय बदल दो, तो वो दूसरे विषय पर लेके आता है, ताकि जो है वो जो तुम्हारा वो वातावरण का टेंस पना है ना, वो थोड़ा सा शांत हो जाए। तो वो दूसरा विषय खड़ा करता है, अब दूसरा विषय खड़ा करता है तो अब हमारा उपयोग एक जगह लगा हुआ है, वो सविकल्प है, साकार उपयोग है, और अब हम दूसरे विषय पर, आप दूसरे विषय पर ले जा रहे हो, दूसरे विषय पर ले जा रहे हो, तो वो दूसरा विषय पर भी चिंतन तो करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, आपने एक प्रश्न खड़ा किया है उसका जवाब देना पड़ेगा, उसमें उपयोग लगाना पड़ेगा, इसको भी साकार बनाना पड़ेगा। दर्शनोपयोग कहां है? ये जो एक जगह हमारा उपयोग साकार उपयोग लगा है और अब दूसरे उपयोग में हमारा साकार उपयोग जा रहा है, इसके बीच में दर्शनोपयोग होगा, और दर्शनोपयोग का भी जो समय है मिनिमम छद्मस्थ अवस्था का, तो गारंटी से केवल ज्ञान के बाद तो और दूसरी बात हम कर सकते हैं, उसको भी असंख्यात समय मिलते हैं, अंतर्मुहूर्त समय मिलता है दर्शनोपयोग को, और वो दर्शनोपयोग में आपका जो उपयोग है वो निर्विकल्प है। क्या हुआ? यहां से उपयोग छूट गया, इस विषय से उपयोग छूट गया, और दूसरे विषय में जब तक नहीं लगा, तो साधन गुणस्थान होता है ना, उसका मतलब है कि जो सम्यक रूपी पर्वत से गिर गया और मिथ्यात रूपी जमीन पर नहीं आया है, उसके बीच में जो होता है वो साधन गुणस्थान होता है, ये तो साधन गुणस्थान है। ऐसे ही एक जगह से साकार उपयोग छूट गया और दूसरी जगह साकार उपयोग नहीं लगा, उसके बीच में उपयोग तो है, आत्मा उपयोग के बिना नहीं रहता, उपयोगो लक्षणम।
अब बीच से भगवान का पक्ष करके अंतर चित प्रकाश कहना चाहिए।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वो नहीं कहना चाहता था अभी, और अभी वो दूसरी बात भी अभी मैं नहीं कहूंगा, आप मेरे को छेड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन समय हो गया है, लेकिन उसमें बहुत उसमें माल है। मैं आपको ये दृशी शक्ति जो है ये अनाकार धवलाकार तो ऐसा कह रहे हैं कि जो ज्ञानोपयोग है उसकी भूमिका बनाता है दर्शनोपयोग, और अंतःचित प्रकाश के माध्यम से बहुत बहुत उसमें मर्म है। दृशी शक्ति अनाकार उपयोग में ही, ज्ञान शक्ति साकार उपयोग में ही। क्यों करते हो, क्यों करते हो, ये उपयोग में परिवर्तन क्यों करते हो, ये उपयोग एक जगह पर क्यों लगाते हो, आखिर क्या पड़ी है तुम्हारे को? सुख के लिए। इसलिए अगली शक्ति जो है ये ज्ञान शक्ति सुख शक्ति का कारण बन रही है, ज्ञान से सुख होता है। बहुत बड़ा बहुत गहरा रिलेशन है, इंद्रिय ज्ञान का इंद्रिय सुख के साथ में, अतिंद्रिय ज्ञान का अतिंद्रिय सुख के साथ में। बोले ये सुख कैसा होता है, अनाकुलत्व लक्षणा, इसमें फिर से लक्षण आया, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। ये सुख शक्ति जो है ये अनाकुल लक्षण वाली है। देखना दो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक तो आई है दृष्टि शक्ति जो अनाकार उपयोगमयी है, और ये आई है सुख शक्ति, ये अनाकुलत्व लक्षणा है। दोनों में फर्क है कि एक ही है? दोनों में बहुत फर्क है। वो तो उपयोगमयी है और ये तो आकुलता का नाश किया इसने, उसने आकार का नाश किया, उसने सविकल्पता का नाश किया। फर्क है दोनों में, वो उपयोग में है, उसके उसके फल में ये अनाकुलता आती है। अनाकार उपयोग हो या साकार उपयोग हो, उसके फल में ये सुख शक्ति का जन्म होता है। कारण है वो, दृष्टि शक्ति ज्ञान शक्ति कारण है और सुख शक्ति उसका कार्य है, फल है। अनाकुलत्व लक्षणा, भैया ये सुख शक्ति अनाकुल लक्षण वाली है, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत तो चाहिए कि मैं ये ज्ञान को दर्शन को अनाकुलता सुख को मैं संभाल सकूं, ऐसा पात्र भी तो चाहिए ना। तो ये जो वीर शक्ति है वो पात्र देती है हमारे को। क्या कहती है? वीर शक्ति बहुत बहुत जोरदार शक्ति है। ये वीर शक्ति स्वरूप की रचना करती है। देखना ये सब काम अनादि काल के हैं, ये कोई कभी ये घटनाएं हुई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आचार्यों ने उसमें ऐसा ये स्थापना निक्षेप करके इसमें आरोपण करके इस भाषा में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य। किस भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं? कि ये वीर शक्ति स्वरूप की रचना करती है। कब करी इसने स्वरूप की रचना? कब करी? निरंतर कर रही। अरे द्रव्य में द्रव्य की रचना ना करे, गुण की रचना ना करे, पर्याय तो प्रति समय हो रही कि नहीं हो रही? तो ये पर्यायों की रचना करने का भी कार्य है, वो वीर शक्ति से होता है। और ये स्वरूप की रचना करने वाली है। स्वरूप क्या है? जो पीछे ज्ञान गया, जो पीछे दर्शन गया, जो पीछे सुख गया, जो पीछे चेतना गई, ये सब आत्मा के स्वरूप हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर ये आत्मा के स्वरूप हैं, और इनकी रचना करने वाली जो शक्ति है स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा। ये स्वरूप निर्वर्तन शब्द है, ये स्वरूप निवर्तन नहीं, निर्वर्तन। निर्वर्तन का मतलब है रचना करना, निवर्तन अलग है, वो परिवर्तन वर्तन वो परिणाम में चला जाएगा। ये निर्वर्तन है, निर्वर्तन माने उत्पन्न करना, रचना करना, स्वरूप की रचना करने वाली ये वीर शक्ति है। वीर शक्ति आपके पास में आ जाएगी तो आप क्या बन जाओगे? आप प्रभु बन जाओगे। प्रभु बनोगे तो विभू बने के बिना मजा नहीं आएगा। क्या बोला? प्रभुता के साथ में यदि विभूता हो तो उसका आनंद बढ़ता है। क्या मतलब? ये हमारा महाराष्ट्र है ना, हमारे यहाँ के प्रभु कौन है बताओ? हमारा मुख्यमंत्री, नाम बता दो आप। मेरे को तो सब जगह नरेंद्र मोदी दिखता है। प्रभु है ना, उसमें प्रभुत्व है। नुल्लू गुंजू हो कोई तो वो प्रभु नहीं, भले ही मुख्यमंत्री बना दो। मनमोहन सिंह में आपको लगती है प्रभुता है तो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रभुता नहीं दिख रही है। फर्क क्या है मुख्यमंत्री में और प्रधानमंत्री में? क्या फर्क है? प्रभुता वो अपने प्रदेश का मालिक है और वो भारत देश का मालिक है। मालिक दोनों हैं, प्रभुता दोनों में है, लेकिन इनकी विभुता में फर्क है। ये इतने से प्रदेश का मालिक है, वो पूरे भारत का मालिक है। ये विभुता में फर्क है। प्रभुता जो है उसके लिए इसमें डाला है शब्द अखंडित प्रताप। देखो अखंडित प्रताप, स्वातंत्र शालित्व लक्षणा, ये भी लक्षण आ सकती है प्रभुत्व शक्ति। और विभुत्व शक्ति जो है वो लक्षणा नहीं है भाई साहब, वो रूपा है। कैसी है रूपा? सर्व भाव व्यापक एक भाव रूपा, सर्व भावों में व्यापक एक भाव स्वरूप जो है वो विभुत्व शक्ति है। सर्व भावों में व्यापक, इसका एक, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। समय हो गया, चलो अपन आज की चर्चा आठ हो गई। ये विभुत्व शक्ति पर अपन अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, और ऐसी आत्मा की शक्तियों का आप विचार करें, उसका ध्यान करें, उसकी वीर शक्ति के द्वारा उसकी रचना करें, और आप सभी को ये सब शक्तियों का स्वरूप ख्याल में आए, इस पवित्र भावना से अभी की बात को विराम देता हूं।